कहते हैं यतो धर्म तत्व जया, जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होता है। एक धर्म होता है सामान्य और दूसरा धर्म होता है विशेष। सामान्य धर्म में खिंचाव तनाव नहीं होता है, सामान्य धर्म में सबका अधिकार होता है। विशेष धर्म के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे सूर्य का सामान्य प्रकाश है, ये सामान्य प्रकाश सबको मिल जाता है। इस सामान्य प्रकाश में से विशेष विशेष फायदा उठाने वाले विशेष विशेष पौधे, पेड़ और बीज होते हैं। तो सामान्य में सबका सार छुपा हुआ होता है, फिर भी सामान्य वस्तु सामान्य माना साधारण नहीं, सामान्य माना सर्वव्यापी सर्वग्राही। तो एक सामान्य धर्म होता है जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, भगवत कीर्तन, भजन, पुण्य दान, आत्म प्रतिकूलानी परिश्रामना आचरित, ये सब सब के लिए, सब जातियों के लिए, सब मजहबों के लिए, सब व्यक्तियों के लिए पालन करने योग्य धर्म है। विशेष धर्म में साधक की अपनी अपनी योग्यता होती है। किसी का मन अन्नमय क्रम अन्नमय कोष में होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तीर्थाटन और कठिन परिश्रम वाला साधन भजन ऐसे व्यक्ति के लिए ठीक है। किसी का मन प्राणमय कोष में होता है, तो ऐसे के लिए योग अभ्यास ज्यादा फायदा करेगा। किसी का भावना में मन ज्यादा रहता है, उसके लिए भक्ति मार्ग की बहुत सुंदर पसंद की है। किसी का विचार प्रधान मन होता है, तो ऐसे लोगों के लिए आत्मा अनात्मा विचार, नश्वर क्या है, शाश्वत क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, अपने साथ चलने वाला क्या है और छोड़कर जाने की कौन सी चीज है, ऐसे ही विद्या का लाभ होता है। प्रथम विद्या का लाभ जिसको हम विद्या कहते हैं, विद्या से धर्म का लाभ होना चाहिए। धर्म वह है कि जो यहाँ भी हमें संतोष दे, आनंद दे, शांति दे और परलोक का भी द्वार खोल दे, वह धर्म है। तो विद्या का पहला लाभ है धर्म। दूसरा लाभ है भगवत प्राप्ति का रास्ता ठीक चुनने की कला दे, और तीसरा है आत्मज्ञान, नित्य नवीन दस की प्राप्ति। नित्य नवीन दस की प्राप्ति ये ब्रह्म विद्या का फल है, भगवत विद्या का फल है। भगवत तत्व का ज्ञान दे दे, भगवत प्रीति बढ़ा दे, और ऐहिक शुद्ध विद्या का फल ये है कि हमें धर्म का लाभ दिला दे। विज्ञान के साथ अगर धर्म नहीं होगा, विज्ञान के साथ अगर मानव धर्म समाज शास्त्र नहीं जोड़ा जाएगा, तत्व ज्ञान नहीं जोड़ा जाएगा, तो विज्ञान संसार को सुंदर बनाने की बजाय संसार को भयानक बना देगा। विज्ञान के साथ अगर आत्मज्ञान नहीं मिला है, तो विज्ञान विनाश का साधन बन जाएगा। पहले मनुष्य के जीवन में धर्म का ज्ञान होना चाहिए। धर्म वह बात सिखाता है कि जैसा तू अपने को नहीं चाहता कि मैं दुखी हूँ, ऐसा दूसरे को दुखी करने का कारण, दुख देने का कारण मत बन। तू अपने को कोई ठगे ऐसा नहीं चाहता है, तू अपना अपमान नहीं चाहता है, अपना शोषण नहीं चाहता है, अपने को परेशान कोई कर दे ऐसा नहीं चाहता है, तो तू दूसरे को परेशानी हो ऐसा आचरण न कर। राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति विदुर कुटीर का उद्घाटन कर रहे थे और विदुर प्रतिमा का निरावरण विधि के वक्त राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने कहा कि आज से 5000 वर्ष पहले जो विदुर जी ने कहा है, महाभारत में जो आई है बात, 2500 वर्ष बाद जीसस ने अपने बाइबल में ली है, तो वह बात आई कि तू अपने साथ जैसा बर्ताव नहीं चाहता है ऐसा अनुचित बर्ताव दूसरे से न कर। तो विद्या का पहला फायदा है कि मानव शास्त्र का ज्ञान मिल जाए। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वह है जो मोक्ष तक ले जाए, और मोक्ष का रास्ता है कि मानवता का ज्ञान होना चाहिए। आज देखो तो सब एक दूसरे से भयभीत है, एक दूसरे से परेशान है, और एक दूसरे पर शक और एक दूसरे के शोषण में लगे हैं। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन, जो हम करते हैं घूम फिर के हमारे सामने आता है। तो सामान्य धर्म यह है कि सत्य पर चले, अहिंसा वृत्ति बढ़ाए, पर दोष दर्शन की अपेक्षा पर गुण ग्राह्यता करें और अपने दोषों का उन्मूलन करें। ये सामान्य धर्म है। विशेष धर्म है साधक की अपनी अपनी विशेष योग्यताओं के अनुसार। जैसे गुरु नानक बगदाद गए तो हिंदू और मुसलमान दोनों लोग चकित हो जाए, ऐसी बांग पुकारी नानक जी ने। मुसलमानी बांग पुकारी अल्लाहु अकबरे, इतनी तो मुसलमानी बांग। और बाद में नानक जी ने बांग पुकारी एक ओंकार सतनाम, तो मुल्ला मौलवी ताजुब में पड़ गए और मुसलमान लोग ताजुब करते हुए एकत्रित हुए। नानक जी का तो काम बन गया, लोग इकट्ठे करने थे, वो जमाना माइक और एम्पलीफायर का नहीं रहा होगा, तो लोग इकट्ठे हो गए और नानक जी ने कहा तुम बांग तो पुकारते हो, अपने कान में उंगली डालकर तो चिल्लाते हो, लेकिन अपने हृदय में भी तो कुछ निगाह डालो कि अपने हृदय में द्वेष भरा है, अपने हृदय में अशांति भरी है, अपने हृदय में शोषण भरा है, तो अपने हृदय को भी शुद्ध करो, आवाज तो बाहर तक जाती है। कबीर जी ने ठीक कहा, कंकड़ पत्थर जोड़ के दीना मस्जिद बनाए, तापर मुल्ला चढ़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तुम ऊंची ऊंची बांग देते हो, क्या खुदा बहरा हुआ है? तुम अपने हृदय में भी जो खुद ही है उस आत्मदेव को, उस खुदा को भी रिझाओ। जो अपने हृदय में है परमेश्वर खुदा मालिक, वैसे का वैसा दूसरे के हृदय में है, तो दूसरे के हृदय का ख्याल करो। शाह हाफिज ने ठीक कहा है। मुसलमान धर्म का प्रसिद्ध फकीर हो गया शाह हाफिज। शाह हाफिज ने कहा कि ए इंसान, तू 100 मंदिर तोड़ दे, तू 100 मस्जिद तोड़ दे, लेकिन जिंदा दिल मत सदाना, क्योंकि जिंदा दिल में खुदा खुद रहता है। तो सामान्य धर्म है कि अहिंसा, दूसरे के मन को ठेस न लगे, दूसरे के शरीर की पीड़ा का कारण हम न बने, दूसरे के ज्ञान में हम अवरोध न हो, ये अहिंसा है। तो शरीर से, मन से, कर्म से, वचन से किसी को कठिनाई न पहुंचाए, ये सामान्य धर्म है। विशेष धर्म है कि हम अपना अन्नमय कोष में अगर जीते हैं तो हमारे लिए परिश्रम वाली यात्राएं उचित होगी। हम अगर प्राणमय कोष में जीते हैं, थोड़ा अंतर्मुख हैं, तो हमारे लिए वो यात्राओं के साथ साथ प्राणायाम आसन आदि हमारी उन्नति का मूल कारण होगा। अगर हम मनोमय कोष में जीते हैं तो भगवत भक्ति से हमारी शीघ्र उन्नति होगी। अगर हम विज्ञानमय या आनंदमय कोष में जीते हैं तो आत्म अनात्म विचार करके कोई ब्रह्मवेता महापुरुष की अनुभूति को अपनी अनुभूति बनाने के लिए हमें मति को उस मार्ग में लगाना चाहिए। 4 युग और 3 गुण सदा बदलते रहते हैं। कभी कभार सतयुग में भी आदमी द्वापर या त्रेता या कलयुग के आदमी पाए जाते थे, सुने जाते थे, और कभी कभी सतयुग में भी कलयुग में भी सतयुग के आदमी पाए जाते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार, दिन में नहीं तो महीना में कई बार सतयुग आ जाता होगा, कई बार द्वापर, कई बार त्रेता और कई बार कलयुग आ जाता है। जब हम आलस्य में घिरे हों, निद्रा में घिरे हों, तंद्रा में घिरे हों, शोषण में घिरे हों, झूठ और कपट में हमारा चित्त लगता हो, तो हमें समझना चाहिए कि हम इस समय कलयुग में ही जी रहे हैं। जब हमारे मन में लोभ भी हो, थोड़ा मोह भी हो, थोड़ा बहुत सत्कर्म भी हो, थोड़ा बहुत भगवत भक्ति भी हो, समझना चाहिए कि हम त्रेता युग में हैं। जब हमारे मन में त्याग हो, थोड़ा बहुत वैराग्य हो, थोड़ा सुमरण हो, थोड़ा सदाचार हो और थोड़ा ऐहिक सुख की भी लालच हो, तो समझना चाहिए कि हम द्वापर युग में जी रहे हैं। जब हमारे चित्त में आत्मा अनात्मा का विवेक जाग गया हो और हमारे चित्त में आनंद के सिवाय, परमात्मा के सिवाय और किसी वस्तु का, सत्य के सिवाय और किसी वस्तु का, सत्य के सिवाय और किसी परिस्थिति का, सत्य के सिवाय और किसी पदार्थ का हमारे चित्त में महत्व न लगे, तो हमें समझना चाहिए कि इस समय हम सतयुग में हैं। ऐसी अवस्था में जब हमारा चित्त सतयुगी अवस्था का एहसास करता हो, उस समय अगर कोई सतपुरुष मिल जाए तो थोड़ा सा ही उनकी संप्रेक्षण शक्ति का धक्का हमें तीनों गुणों से और चारों युगों से जो पार चीज है, उस पार चीज का साक्षात्कार करा देगा। उसको बोलते परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार। यद गत्वा निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, जहाँ जाने के बाद फिर पुनरागमन नहीं होता है, वो मेरा परम धाम है, भगवान ने कहा। कुछ भगवान के अवतार होते हैं जो अलग अलग देश में, अलग अलग काल में, अलग अलग निमित्त को लेकर भगवान के अवतार होते हैं। इसीलिए उस पर ब्रह्म परमात्मा की अहेतु की कृपा का वर्णन करते हुए शास्त्रकारों ने भगवान के अवतारों की व्याख्या अलग अलग रूप से की है। एक होता है भगवान का नित्य अवतार, जैसे शंकराचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, कबीर जी आए, नानक जी आए, लीला साबापू आए, या और भी कुछ महापुरुष आए, एकनाथ जी आए, ज्ञानेश्वर आए, ये से संत नित्य धरती पर आते रहते हैं। इसे भगवान का नित्य अवतरण संतों ने कहा है, शास्त्रों ने गाया है, इसे नित्य अवतार कहते हैं। जो किसी बड़े ऑपरेशन को लेकर आए, बड़े निमित्त को लेकर भगवान प्रकट हो, उसे नैमित्तिक अवतार कहते हैं। जैसे कृष्ण कंस को निमित्त लेकर आए, राम जी रावण का निमित्त लेकर आए, तो इसे नैमित्तिक अवतार कहते हैं। कुछ ऐसे अवतार होते हैं जिसे आवेश अवतार कहते हैं। भक्त को अत्यंत कष्ट पड़ रहा है और भगवान को आवेश हो गया, भगवान किसी वस्तु से है, जैसे हिरण्यकश्यप के अति जुलम से भगवान नरसिंह रूप लेकर आवेश अवतार हो गया। कभी कभी भगवान का प्रवेश अवतार भी होता है, किसी वस्तु में भगवान प्रविष्ट हो गए और भक्त को वहां से बचा लिया। जैसे होलका ने कपट करके प्रहलाद को गोद में बिठाया, उसे वरदान था कि आग तुझे जलाएगी नहीं, तो वो वरदान के बल से कपट करती हुई प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठी, तो भगवान ने अनूठी लीला कर दी कि प्रहलाद बच गया और वो होलका जल गई। तो भक्त की रक्षा के लिए भगवान की जो सर्व सामान्य सत्ता रूप में व्यापक चेतना है, उसमें से कहीं कहीं विशेष चेतना का प्रादुर्भाव होता है। जैसे सूर्य के किरण सामान्य रूप से सब जगह व्याप रहे हैं, हम हमारे हाथ में आईना लेकर भिन्न भिन्न जगह पर घुमाते हैं, तो सूर्य का ही प्रकाश लेकर हमारे आईने ने अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब दिखा दिया। तो अब दीवाल को दो प्रकाशों ने प्रकाशा। इस समय मेरे पास आईना हो और मैं धूप में खड़ा हूं, तो एक प्रकाश तो मंडप के चाहूं और सूर्य के प्रकाश ने तो प्रकाशा है, लेकिन आईने से मैं रिफ्लेक्स डालूं तो वहां विशेष प्रकाश होगा, हालांकि वो सामान्य प्रकाश में से ही विशेष प्रकाश आया है। ऐसे ही सर्व सामान्य अणु अणु में, प्राणी मात्र में जो परमेश्वर छुपा है, कोई विशेष साधक अपनी विशेष योग्यताएं विकसित करके उस परब्रह्म परमात्मा को साकार रूप में प्रकट कर लेता है, अंतर्यामी रूप में प्रकट कर लेता है, अर्चना अवतार में प्रकट कर लेता है, तो भगवान के ऐसे अवतार भी माने गए जिसको अर्चना अवतार कहा गया है। भक्त अर्चना करता है, अर्चना अवतार में भक्त की विशेषता होती है, भगवान की विशेषता नहीं होती है। भक्त जैसा भोजन अर्पण करे, जिस समय अर्पण करे, जो चीज अर्पण करे, भक्त के भाव की विशेषता होती है। फिर धन्ना जाट के सिलबट्टे से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं और श्रीनाथ जी के मंदिर में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं और साबरमती के मोटेरा आश्रम के उस पावड़ियों से भी जलाशय में से भगवान प्रकट होकर शिवलाल के बेटे को जैसे जल में डूबते हुए बच्चे को बाहर निकाल के उस भगवान अंतर्ध्यान हो गए 1981 की घटना है। ऐसे ही वो अर्चना अवतार, अंतर्यामी अवतार, प्रेरणा अवतार भगवान कहीं से भी कभी भी विशेष रूप से प्रकट होकर मार्गदर्शन करके अंतर्ध्यान होते हैं। 1938-40 की घटना होगी ब्रिटिश शासन के काल की। एक बंगाली न्यायाधीश हाईकोर्ट में सर्विस करते थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जब कोई फांसी किसी आदमी को लगती तो 5 न्यायाधीशों को बैठना पड़ता जूरी को। उस जूरी में न्यायाधीश बंगाली बैठे थे और जिस आदमी को फांसी का आदेश था उस आदमी को देखकर न्यायाधीश ने चिल्लाया कि बोले ये निर्दोष है। 4 न्यायाधीशों ने कहा कि गलत बात है। सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसी को गुनाहगार ठहराया है, इसीलिए तो इसको फांसी देनी है। अब तुम्हारा हमारा बोलना व्यर्थ है, इंतजार करो 5 बजे इसको फांसी आनी। उस बंगाली न्यायाधीश ने इनकार कर दिया। तू मैं 5 के बजाय 5:30 बज गए। ब्रिटिश शासन का तार आया 5:30 बजे कि इस आदमी को फांसी नहीं लगनी चाहिए। बंगाली न्यायाधीश को उस अंतर्यामी आवाज पर बड़ा आदर हुआ, बड़ी श्रद्धा हुई। तुरंत उसने रिजाइन पेपर लिख दिया। चीफ जस्टिस ने इनकार किया कि तुम्हारे जैसे हृदय के सच्चे, जिसके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा प्रेरणा कर सकता है, जो अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा झेल सकते हैं, ऐसे न्यायाधीशों की तो देश को जरूरत है। बंगाली न्यायाधीश ने एकदम मनाई कर दी कि देश को तो जरूरत है लेकिन मेरे को उस अंतर्यामी के दर्शन की जरूरत है, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं तो अब जाऊंगा साधु बनूंगा। वो बंगाली न्यायाधीश रिजाइन करके साधु बनने के लिए किसी महापुरुष को खोजते खोजते हरिद्वार आया, ऋषिकेश पहुंचा, इधर उधर भटका। कहीं पर कितने कितने साइन बोर्ड लगे थे, कोई 1008 के लगे थे, कोई 108 के लगे थे, लेकिन उस बंगाली न्यायाधीश का दिल कहीं झुका नहीं। आखिर वे दुकानदारी, साधुओं की दुकानदारी से उपराम होकर कोई सच्चे साधु की खोज में लगे। देव योग से उनका हृदय झुक जाए ऐसा कोई साधु मिल नहीं पाया। वो बंगाली न्यायाधीश ने अपने आप को अभागा समझा और ऋषिकेश बाबा विशुद्धानंद, जिसको काली कमली वाले बाबा बोलते, उस विशुद्धानंद के आसपास के इलाके जहां अभी गीता भवन और काली कमली वालों का स्थान है, उस जगह पर उस बंगाली साधु ने अपने आप को गंगा के चरणों में फेंकने का निर्णय किया। ठीक रात्रि के 12 बजे अब बस कूदना ही था। शायद मन बेईमान हो, डूबने के बाद तैरना जानता हूं, हाथ चलाकर तैर कर बाहर निकल जाऊं तो, इसलिए अपने साथ कुछ पत्थर भी बांध लिए। बस कूदना था, गंगे मात की जय करना था। पंजों के बल से उठ ही रहे थे, एड़ियां उठ चुकी थी, पंजों के बल खड़े थे और एकाएक प्रेरणा अवतार प्रकट हुआ। उस बंगाली न्यायाधीश का हाथ पकड़ता हुआ एक साधु वेश में भगवान का प्रेरणा अवतार प्रकट हुआ। भगवान ने कहा कि ऐ मूर्ख, आत्महत्या करता है लेकिन अहम त्याग नहीं करता है। गुरु नहीं मिला इसलिए आत्महत्या करता है। जा, मैं तेरा गुरु हूं, आज से नारायण नारायण जप कर। बस वो अंतर्ध्यान हो गया, प्रेरणा होता। वही बंगाली न्यायाधीश यात्रा करते करते नर्मदा किनारे पहुंचे चाणूद करनाली में। नारायण नाम का जप करते करते उस बंगाली न्यायाधीश का बाबा वेश धारण करना और नारायण नारायण रटना, उनका नाम नारायण बापू पड़ गया। बड़ौदा के आगे नर्मदा किनारा चाणूद करनाले, वो किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। अभी अभी उनका शरीर शांत हुआ, गए दिन कुछ गए वर्ष, कुछ वर्ष पहले उनका शरीर शांत हुआ तो वो नारायण बापू नारायण नारायण स्मरण करते थे और नारायण नारायण स्मरण करते थे प्राणी मात्र को नारायण का स्वरूप समझते। वे पुरुष अगर किसी के घर की भिक्षा खा लेते, भोजन पा लेते तो उस घर में सुख शांति लहलाने लगती। लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि हमारे घर की भिक्षा ले, सब सोचते थे हमारे घर की भिक्षा ले, आखिर चाणूद करनाली जैसा नगर में किस किस की भिक्षा ले। तो बाबा ने ये जाहिर कर दिया कि जो नारायण नाम का कीर्तन करते करते मेरे को भिक्षा के लिए आमंत्रण देने को आए और ले चले अपने घर, तो उनके घर की रूखी सुखी भिक्षा ले लूंगा और फिर उसमें सब्जी में तेल या घी या कुछ मिर्च मसाला होता तो वो यमुना जी में एक बार अपने वस्त्र में भिक्षा को डालकर गोता लगवा देते और सादी सुदी भिक्षा वो पाते थे। भजन करने वाले साधु के लिए अधिक तेल, अधिक भुना हुआ, तला हुआ ये सब वर्जित है। तो ऐसा समझते हुए उस बाबा ने ये नियम बनाया। फिर भी नियम बनाए तब भी लोगों का तो बहुत आग्रह रहता, अब किस किस के घर की भिक्षा ले। तो उसमें से भी चुने हुए आदमी आज एक के घर तो फिर घूमते घामते 100 दिन के बाद 200 दिन के बाद किसी के घर की भिक्षा का अवसर उनको मिलता था। ऐसा होने पर भी उस बाबा की नारायण निष्ठा, भूतपूर्व वो हाईकोर्ट के जज थे और भगवान अवतरित होकर प्रेरणा अवतार ने प्रेरणा देकर अंतर्धान हो गए, तो ऐसी खबर होने पर लोगों की श्रद्धा बढ़ गई। तो भीड़ भाड़ बढ़ने से उस बाबा को वहां थोड़ा विक्षेप होने लगा। प्रारब्ध वेग तक ज्ञान होने पर भी विक्षेप की अवस्थाएं बनी रहती है। भक्ति मार्ग वाला साधु विक्षेप भगवान के गुणगान करते करते विक्षेप को मिटाता है। योग मार्ग का ज्ञानी समाधि करते हुए विक्षेप को हटा देता है, लेकिन ज्ञान मार्ग का तत्वचिंतक ब्रह्मवेता चालू विक्षेप में तत्व का चिंतन करता है कि ऐसा कोई प्राणी पदार्थ वास्तविक रूप में बना ही नहीं जो मुझ चैतन्य स्वरूप को विक्षिप्त कर सके। ऐसे विचार के बल से तत्वचिंतक साधक अथवा तत्ववेता पुरुष विचार के बल से विक्षेप को हटा देते हैं और कुछ भक्त लोग स्थलांतर करके भी विक्षेप को हटा देते हैं, जहां भक्ति में भंग पड़े उस स्थान का त्याग करके और कोई जगह पर रवाना हो जाते। कुछ भक्तों का ऐसा स्वभाव होता है। तो नारायण स्वामी भूतपूर्व बंगाली बाबा, अभी नारायण स्वामी नारायण बापू लोग उनको बोलते थे, वे बद्री का आश्रम के तरफ चल पड़े और वहां अज्ञातवास करने लगे। धीरे धीरे यात्रियों के आने जाने से नारायण बापू का थोड़ा सा परिचय हो गया और जाकर गांव में लोगों ने खबर कर दी। गांव के लोगों को पता चला तो कुछ लोग गिने गिनाए, खास उनके जो भक्त, वे लोग आए बद्रीनाथ में, बाबा जी हमारी भिक्षा ग्रहण करो, हमारी भिक्षा ग्रहण करो। बाबा ने कहा भिक्षा तो मैं उनकी ग्रहण करूंगा जो भिक्षा पवित्रता से बनाएंगे और भगवान बद्रीनाथ को भोग लगाएंगे, अगर बद्रीनाथ खाएंगे तब हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाते। बाबा ने एक अड़ंगा लगाया ताकि रोज की खटपट मिट जाए। लोगों ने मिलकर भिक्षा बनाई, बद्रीनाथ भगवान को भोग लगाने गए, भोग तो लगाया लेकिन जैसे पुजारी लोग भोग लगाकर उठा लाते हैं ऐसा ही भोग वापस लाया गया। बाबा ने इनकार कर दिया कि ठाकुर जी ने ग्रहण नहीं किया, ठाकुर जी ने नहीं खाया है, ये तो केवल भावना से खिलाकर आए हो, सचमुच ठाकुर जी ने नहीं खाया, ठाकुर जी सचमुच खाएंगे तभी हम खाते। फिर से भोजन बनाया गया और खूब चाव से बनाया गया और बाबा जी ने कह दिया ठाकुर जी खाएंगे, तो खास चुने हुए भक्तों के द्वारा ही भोजन बनाया गया। तो महाराज घटना कहती है, कथा कहती है कि दूसरी बार जब भोजन बनाया गया तब जैसे बड़े लोग भोजन खाते हैं, थोड़ा सा वो चीज उठाई, थोड़ा सा वो चीज उठाई, थाली में से थोड़ी वो चीज उठाई, ऐसे भगवान बद्री विशाल के आगे रखे हुए उस प्रसाद में से थोड़ा बहुत ठाकुर जी ने स्वीकार किया, ऐसे भोजन की थालियों से लक्षण प्राप्त हुए, तब बाबा जी ने नारायण बापू ने भोजन किया। गीताया श्लोक पाठेन गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात्
गोविंद स्मृति कीर्तनात्
साधु दर्शन मात्रेण
साधु दर्शन मात्रेण
तीर्थ कोटि फलम लभेत
तीर्थ कोटि फलम लभेत
हरिओ मधुरम मधुरे भोपि
मधुरम मधुरे भ्योपि
मंगले भ्योपि मंगलम
मंगले भ्योपि मंगलम
पावनम पावने भ्योपि
पावनम पावने भ्योपि
हरे नामैव केवलम
हरे नामे
अशोचानानशोचस्त्वम् अशोचानानशोचस्त्वम् प्रज्ञावादस्य भाषसे
प्रज्ञावादस्य भाषसे
गतासुन् गतासुन्नस्य गतासुन् गतासुन्नस्य नानु शोचन्ति पंडिताः
नानु शोचन्ति पंडिताः।
भगवान कहते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडित पंडिताई की बात कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। तुम पंडितों जैसी बात तो करते हो कि ये युद्ध में मर जाएंगे, कुल का नाश होगा, कुल नष्ट होने से कुल धर्म नष्ट होगा, कुल धर्म नष्ट होने से स्त्रियां का धर्म नष्ट होगा, स्त्रियां दूषित होगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, कुल घातियों को और कुल को नरकों में जाना पड़ेगा। ये बात तो तुम पंडितों जैसी करते हो, लेकिन अर्जुन पंडित तो वह है जो इस सारे संसार को मिथ्या समझता है, अन्वय और व्यतिरेक दृष्टि से जो देखता है। अन्वय दृष्टि से देखा जाए तो शाश्वत स्वरूप सबका सदा है, और व्यतिरेक दृष्टि से देखा जाए तो सब चीजें मृग मरीचिका की नाई, जैसे जल में बुलबुला उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची जान ले रे मीत। जैसे जल में बुलबुले पैदा हो के मिट जाते हैं, ऐसे ये जगत और जगत के लोक, जगत और जगत की सुविधाएं, जगत और जगत की खटपटें, जगत और जगत की वाहवाहियां, जगत और जगत की उपलब्धियां ऐसे ही हैं जैसे पानी में बुलबुले पैदा हो के लीन हो जाए। तो जो पानी में बुलबुले पैदा होते हैं तो उसका बुद्धिमान शोक नहीं करते, और लीन हो जाते तो शोक नहीं करते। मूल धातु तो पानी है, मूल वस्तु तो पानी है, ये अन्वय हुआ। बुलबुले नहीं थे तब भी पानी था, बुलबुले हैं, नाच रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, टकरा रहे हैं, तभी भी पानी है और लीन हो गए तभी भी पानी है। ऐसे ही अर्जुन ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि जो तुम कहते हो ये तत्व से देखा जाए तो कभी मरते नहीं है और वास्तविक में देखा जाए तो ये अभी तुम्हारे सामने है। युद्ध के निमित्त से नहीं मरेंगे तो और निमित्त से मरेंगे, लेकिन दुर्योधन और शाकुनी जैसे निमित्त आततायों के साथ देने वाले हैं। जब आततायी और आततायों के साथियों को अगर युद्ध में नहीं मारोगे तो तुम्हारे को दोष लगेगा, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। तो तुम बातें तो पंडितों जैसी करते हो, लेकिन पंडित लोग तो जो बीत गए मर गए उसके विषय शोक नहीं करते हैं और जो जीवित हैं उसके विषय में शोक नहीं करते हैं। जो मर गए उसके विषय में तो साधु भी शोक नहीं करते, जिनको घर बार छोड़ दिया, फिर तुम्हारे दादा मर गए या तुम्हारे भाई मर गए या तुम्हारा काका मर गए तो साधु भी शोक नहीं करते। और आम आदमी भी जो बीत गए जो गुजर गए जो मर गए उनके लिए शोक नहीं करते हैं, लेकिन वर्तमान में है उनके लिए वो शोक करते हैं। संसारी आदमी के बेटा सेवा नहीं करता है, बेटा मूर्ख है, या पत्नी झगड़ा खोर है, या पत्नी मर गई है, पत्नी बीमार है, या ये वस्तु चली गई है, ये चली जाएगी, तो साधारण आदमी बीते हुए का शोक नहीं करता। अत्यंत साधारण आदमी तो बीते हुए का भी शोक करता है और वर्तमान की वस्तुओं की शोक की खाई में गिरता है। बुद्धिमान आदमी गुजरे हुए का शोक नहीं करता है लेकिन वर्तमान का शोक करता है, लेकिन पंडित तो वह है जो बीते हुए का भी शोक न करे और वर्तमान का भी शोक न करे। पंडित तो वह है जिसको सम दर्शन प्राप्त हो गया है। समवर्तन तो नहीं होता है, समदर्शन होता है। समदर्शन वह चीज है जिसको सुदर्शन भी कह सकते हैं। जहाँ सुदर्शन है वहाँ किसी बात की चिंता फिकर नहीं है। जब आदमी का सुदर्शन हट जाता है अथवा जो आदमी सुदर्शन नहीं पा सकता है उसकी नारायणी दृष्टि नहीं हुई है, उसी व्यक्तियों को शोक होता है। तू बात तो पंडितों की सी करता है लेकिन शोक न करने की जगह पर शोक करता है। जो पहले नहीं थे बाद में नहीं होंगे अभी नहीं के तरफ जा रहे उनके लिए तू शोक करता है। कुल धर्म की बात लाकर तुम्हारी करुणा आवेश का रूप ले रही है। आवेश से धर्म की उपलब्धि नहीं होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखे चारी। तुम्हारे में धीरज कितना है, तुम धर्म पर कितने डटे हो, पत्नी कितनी वफादार है और मित्र कितना वफादार है, ये आपत्काल में ही पता चलता है। विवेकानंद ने शिकागो में प्रवचन करते करते कहा कि फेथ इज सुप्रीम पावर, श्रद्धा जो है परम पावर है। यजुर्वेद में आता है वृत्तेन दीक्षायाम मापनोति, दीक्षायाम मापनोति दक्षिणायाम, दक्षिणायाम मापनोति श्रद्धा, श्रद्धायाम मापनोति सत्यम। व्रत से दक्षता की प्राप्ति होती है, दक्षता से दीक्षा की प्राप्ति होती है, अर्थात श्रद्धा की प्राप्ति होती है और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। गीता ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। ऐसा नहीं कि अभी नहीं बाद में मिलेगा, मचिरेणादि गच्छति समय पाकर नहीं, उसी समय अनुभव होगा। सामवेद में आता है प्रातः श्रद्धा आवाहम्य हम, हे श्रद्धा देवी प्रातः काल हम तेरा आवाहन करते हैं, हमारे हृदय को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना हे श्रद्धा देवी। मध्यान काल में भी प्रार्थना किया जाता है, मध्यान काल हे श्रद्धा आवाहम्य हम, मध्यान काल में हे श्रद्धा देवी मध्यान संध्या के समय भी हम तेरा आवाहन करते हैं, हमारा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाना। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं हो तो कौवे से भी बदतर है। श्रद्धा जिसके हृदय में रहती है उसको स्नेह से पूर्ण करती है। श्रद्धा निर्बल का बल है और संबल भी है। श्रद्धाहीन व्यक्ति न योगी हो सकता है, न भक्त हो सकता है, न धर्मात्मा हो सकता है, न पुण्यात्मा हो सकता है, न महात्मा हो सकता है। श्रद्धा होने के लिए भी महात्मा होने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, धर्मात्मा होने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, पुण्यात्मा होने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, दिव्यात्मा होने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, योगी होने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, भक्त होने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, अरे हैं बेटा होने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। बाबा जी बेटा होने के लिए श्रद्धा चाहिए, ये बात समझ में नहीं आई। ये तो सीधी बात है भैया, माँ ने कहा कि ये तुम्हारा बाप है तभी तुमने माना, तुमने बाप को देखा थोड़ी, ये भी तो श्रद्धा से मानना पड़ता कि ये मेरा बाप है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं ये फलाना माँ आदमी अंधश्रद्धालु है, फलाना अंधश्रद्धालु है, आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं कि क्या श्रद्धा ने ही अंधा होने का ठेका लिया है? अंधश्रद्धा कहना भी तो अंधश्रद्धा है। हकीकत में तो वे लोग श्रद्धालु हैं जो लोग अनदेखी चीज पर विश्वास करते हैं, वे श्रद्धालु हैं। अंधश्रद्धालु कहने वालों को ये पूछो कि तुम जो अंधश्रद्धालु कहते हो तो किस बात पर कहते हो कि अंधश्रद्धालु? अंधश्रद्धा कहने का तुम्हारे पास अधिकार क्या है, साधन क्या है? अरे अव्यक्त को व्यक्त करने का जो साधन है उसको श्रद्धा बोलते हैं, अगोचर को सगोचर करने के साधन को श्रद्धा बोलते हैं। और जिसको अपने जीवन पर, अपने आप पर श्रद्धा नहीं, शास्त्र पर श्रद्धा नहीं, महापुरुषों पर श्रद्धा नहीं, उसका जीवन तो घोर नास्तिक हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तीर्थ में भी श्रद्धा के बल से ही आदमी खींचा आता है, फिर भी तीर्थ में जाने पर भी अश्रद्धा हो जाती तो उसके कई कारण हैं। एक तो नास्तिकवाद की हवा, दूसरा मति की अल्पज्ञता, तीसरा घोर कर्मी लोगों का तीर्थों में निवास और चिटिंग व्यवस्था जयराम जी की, चौथा साधु वेश में छुपे हुए धूर्त अथवा साधु वेश में भिखमंगे घुस जाते हैं, इसलिए भी लोगों की तीर्थ में से श्रद्धा थोड़ी डामाडोल हो जाती है। तीर्थ में श्रद्धा के साथ अगर संयम हो, श्रद्धा के साथ अगर तत्परता हो तो तीर्थ वो चीज है कि हजारों हजारों जन्मों के पाप ताप को काट कर इस जीवात्मा को निष्कलंक परमात्मा के साक्षात्कार के लायक बना सकता है। तीर्थ वो औषध है, जैसे साधारण औषध से मरीज ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर उसको विशेष औषध देता है, अथवा बहुत सारे डॉक्टर मिलकर उसके विषय में विचार करते हैं और ठीक ज्यादा असर करने वाली इंजेक्शन या टेबलेट या खास तौर की स्पेशल दवाइयां यूज करते हैं। ऐसे जिसका मन संसार के रोग से, काम क्रोध से, लोभ मोह से, मद अहंकार से, मेरी तेरी की उन बीमारियों से जिसका चित्त जकड़ा है, ऐसा व्यक्ति भी तीर्थ के सामूहिक डॉक्टरों की भीड़ में आ जाता है। जयराम जी की तीर्थ है सामूहिक डॉक्टर मिल जाए, जैसे विलेज का एक गांव का छोटा मोटा डॉक्टर होता है और सिविल में जाते तो बहुत सारे डॉक्टर मिलते हैं, ऐसे ही तीर्थ एक सिविल सर्जनों की बड़ी एक फंक्शन है जो हमारे अंतर मन के ऑपरेशन और दवाई करते हैं। लेकिन साथ साथ में खतरा भी उतना ही है आज के युग में, अगर सावधान न रहें तो तीर्थ में जो पवित्रता होनी चाहिए उस पवित्रता को हम भूल जाएं, लहसुन प्याज अथवा शराब कबाब या अखाद्य खाने लगें तो फिर तीर्थ बेचारा क्या करेगा। कबीर जी ने ठीक कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी काटी कले जो खाए, वैद्य बिचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। हमने फिर इस साखी को अपने ढंग से कहा, चिंता ऐसी डाकिनी अथवा वासना ऐसी डाकिनी काटी कले जो खाए, तीर्थ बिचारा क्या करे कहां तक पवित्रता लगाए। सियावर रामचंद्र की जय। तो तीर्थ में कुछ महापुरुषों के वचन हैं कि तीर्थ में शराब गांजा भांग पीना नहीं चाहिए और पीने वालों की शरण जाना नहीं चाहिए। तीर्थ में अपने स्वत्व का भोजन हो गृहस्थी के लिए तो ठीक है, यहाँ तक कि अपने काम आने वाले भोजन आदि के बर्तन कहीं से ले लिए तीर्थ में तो कोई बात नहीं, बाकी अपने काम आने वाली कोई भी चीज अपने अपने पैसों की अपने स्वत्व की काम में लानी चाहिए। यहाँ तक कि औषधि भी तीर्थ में मुफ्त की न ले वो भी दान की मानी जाती है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो इस प्रकार के तीर्थ निवास के नियम संभल समझकर जो आदमी अल्प आहार करता है, इंद्रियों को अल्प विषय देता है और ईश्वर नाम जप करता है, तीर्थ यात्रा करते जाएं तो पैदल जा रहे हैं तो भगवान नाम मानसिक जप करते जाएं और जहां विश्राम करें वहां भगवान के गुणगान करने वाला कोई सत्संगी मिल जाए तो ठीक है, कहीं से सुनने को मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भगवत प्रीति बढ़ाने वाले पुस्तकों का पाठन पाठन करना चाहिए। सामूहिक यात्रा करते हैं, रेल से जाते हैं, बैलगाड़ी से जाते हैं, बस से जाते हैं, तभी भी यात्रा के समय जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, धुन बोलना चाहिए, बढ़िया बढ़िया स्तोत्र गाने चाहिए। जैसे बारात में जाने से बराती बारात में पहुंचे उसके पहले बराती अपने कपड़े सजा धजा के जाता है, ऐसे तीर्थ में जाएं भगवत प्राप्ति के रास्ते जाएं तो अपने अंतःकरण को सजाते जो जाते, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान सुख स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान प्राणी मात्र का आधार है और उस जगत आधार को हम जागृत करने की उस पवित्र जगह पर जा रहे हैं, ऐसे भाव से भर कर जो जाता है तीर्थ में और पवित्रता से संयम से रहता है तो उसका चित्त पवित्र होता है। तीर्थ में भी साधुओं को खोज लेना, सतपुरुषों को खोज लेना और उन महापुरुषों की ज्ञान गंगा में नहाना वो अनंत गुना फल माना गया है। एक तो तीर्थ क्षेत्र, फिर ज्ञान गंगा में नहाना। मैंने सुनी है वो प्राचीन कथा, एक महात्मा थे, उन्होंने स्वप्न देखा, गंगा का कुंभ मेला पूरा हुआ था, उन दिनों में वो महात्मा ने स्वप्न देखा, आपस में तीर्थ देवता सब इकट्ठे हुए, प्रयाग भी हुआ, गंगा जी भी, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग आदि भी आए हैं, बहुत सारे तीर्थ आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इस समय सबसे अधिक पुण्य किसको हुआ। कईयों की व्याख्या होते होते आखिर सबसे अधिक पुण्य हुआ है रामू चमार को। रामू चमार जो केरल रहता है उसको अधिक से अधिक पुण्य हुआ है तीर्थ नहाने का। महात्मा तो दृढ़ निश्चय होते हैं, रामू चमार केरल में फलाने गांव में, उसको तीर्थों में सबसे अधिक पुण्य हुआ है, तीर्थ स्वयं उसकी प्रशंसा कर रहे। महात्मा चल पड़े रामू के दर्शन करने को। चलते चलते महात्मा पुरुष हैं, आज यहाँ कल वहां से करते करते कई महीनों के बाद वो केरल पहुंचे, फलाने गांव में रामू चमार रहते हैं, बोले रहते हैं। उसको महात्मा कहते कि भाई तू बाहर से तो ये चप्पल सीने का धंधा करता है, लेकिन तूने ऐसा कैसा तीर्थ में स्नान किया था, कौन सा मंत्र बोलकर तू तीर्थों में नहाया था, कौन से दिन तू तीर्थों में गोता मारा था। बोले महाराज मैं और तीर्थ, महाराज ऐसे करते रामू के आंखों से आंसू झड़ पड़े। बोले महाराज तीर्थ में मैं नहीं जा पाया, मैंने सुना था कि गंगा में कुंभ होने वाला है, 12 वर्षीय कुंभ स्नान में गंगा किनारे नहाने जाऊंगा और इसलिए महाराज मैं रोज का एक आना, आज के 6 नए पैसे पुराने जमाने का एक आना, मैं रोज का एक आना निकालता था, जाऊंगा तीर्थ में नहाऊंगा सत्कर्म करूंगा, लेकिन महाराज मैं नहीं जा पाया, मेरी पत्नी आज से 6 महीना पहले की बात है महाराज, मेरी पत्नी मां होने वाली थी, जो मां होने वाली होती है गर्भिणी स्त्री उसकी कोई इच्छा हो तो पूरी की जाती है, प्रयत्न करके पूरी करना चाहिए, शास्त्रीय इच्छा हो उसकी, ऐसा नहीं कि बोले फिल्म ले चलो और तुम ले जाओ तो छोरा फिर बदमाश पैदा हो जाएगा। जय राम जी की, शास्त्रीय इच्छा, जयराम जी तो बोला करो नारायण नारायण, बोलो ना नारायण 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 नारायण। राम कहता है कि महाराज मैंने एक एक आना करके कुछ रुपए इकट्ठे किए थे, मेरी पत्नी माँ होने वाली थी तो पड़ोस में कहीं से सुगंध आ रही थी मेथी की सब्जी की। मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे ये सब्जी खानी। मैं पड़ोसी के घर गया, मैं कहे मेथी की सब्जी आपने बनाई है, मेरी पत्नी की इच्छा है, थोड़ा सा साग दे दीजिएगा, मेरे घर का तो आप नहीं खाएंगे इसलिए मैं उधारा नहीं मांगता हूँ, ऐसी भेंट में मांग रहा हूँ। उन लोगों ने कहा कि भेंट में तो मांग रहे हो लेकिन तुम्हारे खाने लायक नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले शुद्ध नहीं है। भाई मैं तो चमार हूँ, मेरे लिए शुद्धि अशुद्धि, मैं कोई सन्यासी या ब्राह्मण थोड़े हूँ, मैं तो राम हूँ चमार, मेरे लिए पवित्र अपवित्र क्या है, दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ले जाओ तो ले जाओ, लेकिन हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से आय का साधन बंद हो गया है, इसीलिए शमशान में कोई आदमी अपने पूर्वजों की पसंद सब्जी मेथी छोड़ गया था और हम शमशान से उठाकर लाए हैं, और आलू दो चार थे पड़े थे घर में, उनको मिलाकर सब्जी बनाकर खा रहे हैं। उस गरीब की आंखों से आंसू टपक पड़े। बाबा जी मैं मेथी की सब्जी तो लाया उसके घर से लेकिन मेरा दिल माना नहीं गंगा जाने को, मैंने गंगा स्नान के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे बाबा जी मैं चुपचाप उसके घर रात्रि के समय सीधा सामान और कुछ पैसे छोड़कर आ गया, दिन को ले जाऊं तो लोग क्या कहें कि मोची से पैसा ले रहा है, वो बेचारा लेता नहीं, इसलिए जैसे बाबा चोर चोरी करने को रात को जाता है ना, ऐसे मैं उसके घर की हालत देखकर मैं उसको दे आया, उसके घर छोड़ आया। बाबा जी कुछ दिनों के बाद मैंने सुना था कि कुंभ का तीर्थ चालू हो गया है और मेरे को स्वप्न हुआ, भगवान नारायण लक्ष्मी सहित पधारे हैं स्वप्ने में, मुस्कुरा कर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि वत्स तूने सारे तीर्थों का स्नान कर लिया है, वत्स हम तुझ पर बहुत प्रसन्न हैं, तूने महातीर्थ किया है बेटा। बस महाराज मैंने गंगा जी के दर्शन तो नहीं किए लेकिन मेरे हृदय से तब से संतोष हुआ है कि मैंने अपने जीवन में कोई तीर्थ किया है, किसी गरीब के आंसू पहुंचे हैं, किसी अनाथ की सेवा में मैंने अपने अर्थ को सार्थक किया है। महाराज मैंने दूसरा तीर्थ तो कोई नहीं किया लेकिन ऐसा एक तीर्थ किया कि किसी कुटुंब की एकदम दयाजनक स्थिति थी और उस दयालु की यात्रा का खर्च मैंने उसकी उनके जीवन की यात्रा में लगा दिया। महाराज तब से मेरे मन में बड़ी शांति रहती है, बड़ा आनंद रहता है। मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर अपने विशेषता नहीं लेकिन अपने अनुभव को आपकी मिलकत बनाने के लिए बोल रहा हूँ। हम घर में थे तो रोज पूजा किए बिना हम कभी पानी नहीं पीते, कहीं जाते तो ठाकुर जी साथ में होते, सेवा करके बाद में पूजा करके बाद में पानी पीते, घर में रहते तो शिवालय की पूजा करने के बाद पानी पीते। एक बार हम शिव मंदिर जा रहे थे, सुबह के 9 बजे थे 9:30, रास्ते में एक युवान पड़ा था, लोग किनारा करके निकल जाते थे, कोई बोलता था इसने दारू पिया है, कोई बोलता है मर गया, कोई बोलता है पागल है। मैंने शिव पूजा का कलश किनारे रख दिया, उस जवान को हिलाया, है, है, बाबा भाई भाई, तो उस जो पूजा का पानी था उसके मुंह में डाला, उसमें थोड़ी चेतना आई, पूजा का दूध था वो उसको पिला दिया। वो आदमी जवान लड़का 18-20 साल का था बैठा, मैंने उससे पूछा क्या आज? उसने बोला बहुत भूख लगी, शिव जी की पूजा छोड़कर हम घर में अपने हिस्से का जो सिरा वीरा जो कुछ नाश्ता बना था वो ले आए, उसको खिलाया, फिर उससे उसकी हमने राम कहानी पूछी। उसने कहा कि बाबूजी उस समय हमारा साधु वेश नहीं था, आज से 29 साल पहले की बात है, बाबूजी हम बिहार के हैं, मेरा पिता मर गया और मेरा काका, हम गरीब हैं, काका दिन रात मेरे को डांटता था, कमाता नहीं, मुफ्त का खाता है, गाली देता था, और मेरे को कोई नौकरी धंधा नहीं, तो मैं भटकता भटकता गुजरात का नाम सुना था तो कालूपुर स्टेशन पर पहुंचा, वहां मजदूरी चाहा लेकिन कूलियों ने मेरे को मार भगाया, फिर पैदल पैदल चलते मणिनगर स्टेशन पर, कहीं मजूरी मिल जाएगी वहां कूली न होंगे तो मेरे को मिल जाएगा, अथवा दो चार कूली होंगे तो हाथा जोड़ी करके कुछ मजूरी कर लूंगा, इस विचार से मैं कालूपुर से पैदल आ रहा था, और यहाँ भालक के बस स्टैंड के पास रामूलिया बिल्डिंग में हम लोग रहते थे तब की बात, मेरे को चक्कर आए, हम गिर पड़े, और दूसरा कुछ नहीं, मैंने दारू भी नहीं पिया है और मेरे को मूर्छा भी नहीं आई, भूख था उसलिए बाबू जी ये हालत, हमारे अपने खर्ची के जो पैसे थे उसकी सेवा में लगा दिया, उसको पैडल रिक्शा में बिठाकर जहां जाना था वहां भेज दिया, दूसरे दिन ऐसा भीतर से तूफान चला मानो शिव जी की पूजा करते करते अंतर्यामी शिव कह रहा है कि बेटा मैं प्रसन्न हूँ, कल की तेरी पूजा मेरी स्वीकार हो गई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा अगर तू मुझ ऐसा व्यवहार करेगा तो तू मुझसे जल्दी मिलेगा, मैं तेरे जैसों को चाहता हूँ। मैं कह ये कौन बोल रहा है कि जो तेरे को पूजा की प्रेरणा दे रहा था, जिस जो तेरे साथ है वो ही बोल रहा है, और भगवान की दया भी ऐसी हुई कि फिर ज्यादा दिन संसार भट्टी में पचना नहीं पड़ा, उस गरीब की सेवा मानो परमात्मा की सेवा हो गई, और उस ईश्वर ने हमारी सचमुच में नैया पार कर दी जो आपके सामने हम बैठे हैं। ऐसे जीवन में थोड़े छोटे मोटे और भी प्रसंग आते हैं, तो किसी गरीब गुरबे की सेवा मिल जाए, कोई साधु सच्चे महान पुरुष की सेवा मिल जाए, माता पिता की सेवा मिल जाए, और परमात्मा का ध्यान मिल जाए, संयम और सदाचार मिल जाए, आजीविका के लिए खाना पीना कोई मना नहीं है तीर्थ में, लेकिन सोडा लेमन अबक्ष बक्ष और ये चरस गांजा आदि, इससे तीर्थत्व का प्रभाव कम होता है और हमारा पुण्य भी कम होता है। जप करे, ध्यान करे, स्मरण करे, गपसप हम लोग न लगाए, न किसी की निंदा करे, न किसी की निंदा सुने, न किसी का बुरा सोचे, न किसी का बुरा करे, तो हमारा समय सार्थक होगा। तीर्थ आदमी को आध्यात्मिक प्रसाद पाने के लिए एक भूमिका बना देता है, फिर उस भूमिका में वो कितना आगे चलता है वो उसके हाथ की बात है। जैसे स्कूल आदमी को विद्या की भूमिका तो देता है, लेकिन विद्यार्थी चार क्लास पढ़ के निकल जाता है, दो क्लास पढ़ता है, एक क्लास पढ़ता है, अथवा कि पीएचडी तक पढ़ता है, उसकी मर्जी की बात है। ऐसे तीर्थ में आध्यात्मिकता का श्री गणेश भी होता है, कुछ प्रोग्रेस भी होता है, साधक और जिज्ञासु उच्च कोटि के महात्माओं को खोजकर विवेक वैराग्य में बढ़ोतरी भी करते हैं, और जिज्ञासु लोग को शंका समाधान करके अपने चित्त के प्रसाद को भी पा लेते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं, तू बात पंडित की सी करता है कि कुल धर्म नाश हो जाएगा, स्त्रियों का व्यवहार दूषित हो जाएगा, पितरों का ये हो जाएगा, वर्णशंकर समाज पैदा हो जाएगा, लेकिन अन्वय और व्यतिरेक से अर्जुन तू देखे तो तत्व रूप से तो भीष्म द्रोण और सबका स्वरूप ज्यों का त्यों है, और मायावी दुनिया से देखे तो ये पैदा हुए तो मर जाएंगे, इसलिए अभी युद्ध के प्रसंग में तू सन्यासी होने के लिए यहां नहीं आया, अभी तू सन्यास की बात कर रहा है, जहां तेरा सामने कर्तव्य आया है वहां से तू भागने के लिए सन्यास की बात कर रहा है। अगर तुझे सन्यास लेना ही था, विवेक वैराग्य संपन्न होकर तू सन्यासी होना चाहता था तो वो बात अलग थी, लेकिन अभी तू सन्यास की आड़ देकर अपना कर्तव्य छोड़ता है तो वो उचित नहीं है। पंडित तो किसी तो बातें करता है, लेकिन सच्चे पंडित तो वो होते हैं जो बीते हुए की चिंता नहीं करते, जो मर गए उनकी चिंता नहीं करते, और जो बैठे हैं मरने के लिए उनकी भी वो चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि जो आए हैं वो जाएंगे, राजा रंक फकीर, जो मर गए वो मर गए, लेकिन जो बाकी के बैठे हम लोग वो भी तो मरने के लिए बैठे, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन को तैयार खड़ा, सिकंदर दारा हल्याव्या, सोनी लंका वारा हल्याव्या, कारून खजाने जा मालिक हथे खाली, बेचारा हल्या, तो कोई मित्र कुटुंबी गए, तो कोई वस्तुएं गई, कोई वस्तुएं छोड़कर गया, तो कोई वस्तुओं के लिए रोता रोता गया। लेकिन ये संसार चलचित्र जैसा है। नानक जी ने ठीक कहा है, जैसा स्वप्न रैन का तैसा ये संसार। जागो लोको मत सुओ ना करो नींद से प्यार, जैसा स्वप्न रैन का ऐसा ये संसार। ये कबीर जी ने कहा है। नानक जी ने कहा, जैसे जल में बुलबुला उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची जान ले रे मीत। जैसे बुलबुला पैदा होता है जलाशय में और जलाशय में उछलता कूदता और लीन हो जाता है, जगत की रचना ऐसी होती है। जैसे कोई पोस्ट मास्टर है अथवा कोई मुनीम है, तो मुनीम और पोस्ट मास्टर अपना कर्तव्य किए जाएं, लेकिन पोस्ट मास्टर का आग्रह नहीं होता है कि सरकार आदेश कर दे कि यहाँ पोस्ट कार्ड ज्यादा है तो यहाँ से उठाकर फलानी पोस्ट ऑफिस में भेज दो, अथवा यहाँ रुपए ज्यादा जमा हो गए तो फलानी पोस्ट ऑफिस में भेज दो। तो पोस्ट मास्टर अगर कह दे कि नहीं, मेरी पोस्ट में इतने रुपए आए तो मैं घर ले जाऊंगा, ये मेरे ही हो गए। मुनीम कह दे कि मेरे इस फर्म में आए तो मैं अपने फर्म में रखूंगा, अपने पास ही रखूंगा। एक सेठ है, बहुत सारी फर्में हैं। अब सेठ कह देता है मुनीम को कि 2 लाख इधर भेज दो, 5 लाख इधर भेज दो, तो मुनीम का कर्तव्य भेज दे। अगर मुनीम ना कहता है अथवा पोस्ट मास्टर ना कहता है तो दंड के पात्र होते हैं। ऐसे ही भगवान की विशाल सृष्टि है। भीष्म द्रोणाचार्य यहाँ से उठाकर वहां रखे गए, वहां से उठाकर वहां हट रखे गए। इसमें तू दुराग्रह करेगा तो थोड़े चलेगा। जो उसकी व्यवस्था, जिसको जिसके निमित्त से, जैसे पोस्ट मास्टर का सामान जिसके निमित्त उठवाना चाहे सरकार, अथवा मुनीम के वहां से सामान जिसके निमित्त उठवाना चाहे सेठ, ऐसे तेरे निमित्त से वो विराट इनको उठवाकर स्वर्ग में ले जाना चाहता है तो तू मना क्यों कर सकता है? जयराम जी तो बोलना पड़ेगा।